संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे।
दस लक्षण महापर्व के अंत में आने वाला ये क्षमापना समारोह है, अथवा क्षमावाणी दिवस, दस धर्मों की आराधना से जो हमारे हृदय में निर्विरह बैर का भाव, निराभिमान का भाव, जो सरलता प्रकट हुई है, उसका ये परिणाम है कि अंत में हम सब एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं और बरस भर के बैर भावों को भूलकर अपने परिणामों को शांत करते हैं। इस क्षमावाणी महापर्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इन दोनों बातों पर अपन अभी विचार करेंगे। पहले अपन इस बात पर सोचें कि क्या हो रहा है, फिर बाद में ये चर्चा तो आएगी ही कि वास्तविक स्वरूप क्षमावाणी का क्या है, क्या होना चाहिए, उसकी चर्चा आएगी। पहले संक्षेप में ये बात करें कि आज इसका स्वरूप क्या हो गया है। मुझे किसी से ये नहीं कहना है इस महापर्व को हम मनाते नहीं हैं या उत्साह से नहीं मनाते हैं या कोई कमी रखते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इसे हम बहुत ही उत्साह से नहीं, अति उत्साह से मनाते हैं। एक दूसरे से क्षमा याचना कहते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म कहते लोग हर जगह मिल जाएंगे, हजारों रुपए के कार्ड छपते हैं, एक से एक बढ़िया, एक से एक सुंदर डिजाइनों पर, और हर व्यक्ति सैकड़ों लोगों को बाई पोस्ट भी वो क्षमावाणी कार्ड भेजता है। इतना सब होता है, इतने सब उत्साह से मनाते हैं, फिर भी क्षमावाणी महापर्व का जो लाभ हमारे जीवन में होना चाहिए वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। वास्तव में आज हम इतने औपचारिक हो गए हैं, इस क्षमावाणी का पर्व भी एक उपचार बन के रह गया है, एक सामाजिक चीज बन गई है। जबकि क्षमा मांगना और क्षमा करना ये दोनों व्यक्तिगत क्रिया है, क्योंकि तो अपराध भी व्यक्तिगत होते हैं ना। हमने आपके विरुद्ध अपराध किया है तो आपसे हमें क्षमा मांगना चाहिए, हमें आपका धक्का लग गया है आपको हमसे क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन जिनसे क्षमा मांगना चाहिए क्या हम उनसे क्षमा मांगते हैं? सारी समाज से तो कहते हैं भाई मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, हमारी ये भाषा बन गई है। गलती हो गई हो तो हुई है, ये स्वीकार नहीं है। तो पता नहीं है तूने कितनी गलतियां की हैं, सब पता है, लेकिन भाषा में उन्हें स्वीकार कहां करना चाहता है। हो गई हो तो, मैंने तो कोई गलती की नहीं, क्यों तो आप माफ कर देना सामूहिक। लेकिन वास्तव में तो हमको सोच समझ कर कि हमने किसके प्रति अपराध किया है, मन से, वचन से, काया से। काया से अपराध किया हो तो सामने वाले को पता भी हो, हमने आपको धक्का दिया हो तो आपको पता भी हो, मुझे पे गाली दी हो तो आपको पता होगा, लेकिन पीठ पीछे गाली दी हो तो आपको तो पता ही नहीं, लेकिन हमने तो अपराध किया है ना, हमने तो आपकी निंदा की है ना। और मन में, मन का तो पता ही क्या चलेगा कितना हम करते हैं, तो हमें तो पता है ना। तो हमें वो याद कर करके एक एक शत्रु को खोज कर और उस सब अपराध की स्वीकृति पूर्वक, भाई साहब आपको पता नहीं है मैंने आपके विरुद्ध क्या जहर उगला है, वो मेरी गलती थी, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। ऐसा कोई करता है? सचमुच हम विचार करें, हम किन से क्षमा मांगते हैं? जिनसे हमारी दोस्ती है, बिल्कुल घनिष्ठ मित्रता है, कभी हमने जिनके बारे में एक शब्द भी विरुद्ध में सोचा नहीं है, बोला नहीं है, कभी बुरा किया ही नहीं है, उसे माफ करना, माफ करना, उनसे माफ करना। क्यों? ये मित्रों का पर्व नहीं है भाई साहब, ये शत्रुओं का पर्व है। आज का एक दिन मित्रों से मिलने का नहीं है, इसका तो हमने नाम भी बदल दिया है, बड़ा नाम रख दिया, विश्व मैत्री दिवस। ये मित्रों नहीं शत्रुओं का दिन है, शत्रुओं से मिलने का दिन है पंडित जी, ये शत्रुओं को मिटाने का दिन नहीं, ये शत्रुता मिटाने का दिन है। हमको तो एक एक शत्रु को याद करके और उसके विरुद्ध हमने क्या किया है उसे याद करके उसके घर जाकर विनय पूर्वक सच्चे हृदय से क्षमा मांगना चाहिए। बोलो तब ये सार्थक हो, भले ही हम एक व्यक्ति से भी मांगे तो समझ लेना हमारी क्षमा मांगनी सार्थक है, और हमने लाखों से मांगी तो उसका कोई मतलब नहीं। हमारी क्या हालत हो गई है? बाजार से छपे छपाए कार्ड मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रेस वाले छपा के रखते हैं, उन्हें हम खरीद के लाते हैं, अपने फर्म का नाम भी साथ में छपा देते हैं, क्यों? और हमारे ऑफिस में एक लिस्ट है जिसके अनुसार कोई शादी विवाह हो तो कार्ड जाते हैं, कोई मर जाए तो कार्ड जाते हैं, होली दिवाली के कार्ड जाते हैं, क्यों जाते करते हैं, व्यापारिक कार्ड जाते हैं, न्यू ईयर के कार्ड जाते हैं, वो लिस्ट छपी छपाई है ऑलरेडी, और मुनीम गुमास्ते उस लिस्ट के हिसाब से समावानी कार्ड भेज देते हैं। सेठ जी को मालूम ही नहीं है कि हमने किस किस से क्षमा मांगी है। बोलो आपसे मैं कहूंगा साहू अशोक कुमार जैन ने मेरे से माफी मांगी, कहा मांगने तो मैं तैयार हूं, तो साहब से क्यों मांगे, उन्हें क्या गलती थी? लेकिन मेरे पास है ना प्रमाण, क्या चौन का ये क्षमावाणी कारण ऐसा भसने लगे, इसमें क्या है? क्यों ये तो तुम जैसे लाखों को गए होंगे, उन्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे लिए कार्ड गया भी है। क्यों मुनीम गुमास्तो ने डाल दिया होगा, न माफी मांगने वाले को पता है कि मैंने किन किन से माफी मांगी है, क्यों? और जिनके पास वो कार्ड गए हैं उनने भी देखे कहां है, ढेर सारे आते हैं हजारों, ऐसी थप्पी बन के रख देती है सेठ जी के सामने, महीनों तो सेठ जी को देखने की फुर्सत नहीं मिलती है, काम की डाक देखे ना, ये बेकार के कार समय खराब कब करें, क्यों? अभी संडे मंडे को कोई फुर्सत मिल गई तो उन कार्डों को उठा उठा कर देख लेते हैं कि किन के आए, देख लेते हैं पढ़ते नहीं है, क्यों? और क्यों पढ़े, पढ़ने की जरूरत क्या है? क्योंकि जिसने भेजे हैं उसने लिखे ही कहां है, उसने भी कहां पढ़े हैं, उसने क्या लिखा है, बाजार से सीधे कार मुनीमों ने खरीदे और भेज दिए हैं, उसने भी नहीं पढ़ा है। यदि प्रेस की गलती से उसमें 10-20 गलतियां रह जाए, 2-4 गालियां लिखी जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जिसके पास वो कार्ड जाने वाला है उसे कोई पढ़ने वाला नहीं है, सब गेटअप देखेंगे, कार्ड बहुत बढ़िया है, कितने का आया होगा, 5 रुपए का तो होगा, अच्छे जो कार्ड आए उनके नमूने निकाल के मुनीम जी रख लेने 2-4, अगली साल अपन भी वैसे ही कार्ड मंगा करके भेजेंगे, क्यों? कार्ड देखे जाते हैं पढ़े नहीं जाते। ऐसी क्षमा वाणी से किसको लाभ होता है? प्रेस वालों को, उस डाकखाने के विभाग वालों को, क्यों? कार्ड भेजने वालों को, हमें और तुम्हें भेजने वालों को और पाने वालों को तो कोई लाभ नहीं होता है, इतनी तकलीफ जरूर होती है डाक विभाग को कि इतना ढेर लग जाता है दिवाली कार्डों का, क्षमा वाणी कार्डों का, न्यू ईयर कार्डों का, असली डांट प्रभावित होती है, साल में आए ना, उससे तो नुकसान ही होता है देश का, समाज का। आज की क्षमावाणी का क्या स्वरूप हो गया है वो आप समझ लीजिए। ऐसी क्षमावाणी क्या निहाल करेगी और उसका हम क्या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो सकेगा। मेरे पास भी हजारों कार्ड आते हैं, लेकिन मैं तो पिछले 30 साल 40 साल से किसी का जवाब नहीं दिया है। कार्ड छपाना तो अलग बात है, डालना तो अलग बात है। देख जरूर लेता हूं, जैसे कभी 2-3 महीने बाद फुर्सत मिलेगी पहुंचूंगा, देख किन किन के आए हैं। कल्याण जी भाई, आपके यहां ऐसा नहीं होता? मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हरेक आदमी छाती पर हाथ रखकर विचार करके देख रहे कि आज ये महापर्व, ये वर्ष भर के मनोमालिन्य को मेट देने में समर्थ था। ये हम चाहते थे तो एक वर्ष का जो बैर विरोध का जमा खर्च है वो साफ हो सकता था। क्यों? क्षमावाणी के दिन के बाद हमारे पास, हमारे खाते में एक भी शत्रु नहीं रहना चाहिए पुराना, तो एक दिन पुराना हो। अब हम नए बनाएंगे ना कल से। लेकिन बोलिए, क्या हमारी शत्रुओं की लिस्ट में से एक भी नाम कटा है? नहीं कटा है तो ऐसा क्षमा मानी से क्या? क्षमा वाणी का अर्थ तो ये है, सीधा सच्चा अपनी भाषा में, कि हृदय में हमने उत्तम समाधि 10 धर्मों की जो आराधना की वो इतनी इतनी अधिक हुई कि आज आकर हमारे मुंह से बाहर, मुंह से उबल पड़ी। ख्याल में आया कि नहीं? घड़ा होता ना, घड़ा तो घड़ा में पानी भरते हैं, भरते कहां से? उसके मुंह में से पानी डाला जाता है। भरता कहां से है? पेंदे से, नीचे से। मुंह नहीं भरता है पहले, और मुंह से पानी उबलने लगे उसका क्या अर्थ है? कि घड़ा पूरा भर गया है, अब उसमें वो समाता नहीं है, तब तो मुख में से निकलता है ना। तो ये क्षमा वाणी का अर्थ है कि हमारे हृदय रूपी घट में क्षमा इतनी भर गई है कि अब वो समाती नहीं है, तो मुंह में से बाहर उबलने लगी है, इसलिए हम कहते क्षमा करना हो क्षमा। बोलो ऐसा है? लेकिन आज हम तो जादूगर हो गए। जादूगर होता है ना, घड़े में बिल्कुल पानी नहीं है और ऊपर से पानी बहता हुआ दिखा दे आपको, ऐसे हमारे हृदय के अंदर में रंज मात्र क्षमा भाव नहीं है। और मैं तो मिथ्या में दुकान मिथ्या में क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, ये सब यही ओठो ओठो से ही निकलता है, इसके अंदर से रंज मात्र भी ये नहीं है। आज की क्षमा वाणी सिर्फ वाणी की क्षमा रह गई है, जवान जवान पर ही बात है, अंदर हृदय की नहीं है। और होनी कैसी चाहिए? हृदय में होना चाहिए, तब वो हमारे बात बाहर आए, तब वो बात सच्ची है। असली लोगों से तो कोई माफी मांगता नहीं है। कदाचित कभी हमें मालूम हो तो इन दो आदमियों का आपस में बहुत झगड़ा है और ये 10 वर्ष से बोले नहीं है, आज क्षमावणी का दिन है तो हम इनकी बैर विरोध खत्म करवा दें मुकुल। अपन चलो 5 आदमी बड़े बड़े लोग मिलकर से कोशिश करें कि साहब आपने हजारों लोगों से क्षमा याचना की है, यहां साहब की है, तो आपने आपके बड़े भाई साहब से की, उससे तो मैं शकल नहीं देखूं, लेकिन आज क्षमा मानी का दिन है ना, आपका बड़ा भाई है ना, उनसे भी मांगना चाहिए ना। नहीं और बात करो, कोई 2 लाख रुपए चाहिए हो तो बोलो, मैं दे दूं जहां के लिए, ये बात मेरे से मत करना। बहुत सब पीछे पड़ गए। देखो भाई साहब, यदि आज आपने हमारी बातें नहीं मानी, हमारे लिए नहीं कह रहे, तुम्हारे के लिए कह रहे हैं, तो आज से हमारी तुम्हारी भी कटी, हमारा तुम्हारा भी संबंध खत्म। अब घबराएंगे समाज में मेरी प्रेशर चली जाएगी। ठीक है ठीक है, आप लोग नहीं मानते हो तो मैं तैयार, पहले उनसे भी तो पूछ के आओ, तेरी में माफी मांगूंगा तो वे माफ कर देंगे कि नहीं, इस शर्त के साथ पहले नक्की करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम माफी मांगने जाएं और उनने चार और सुना दी, तो अभी तो 10 साल हुए हैं, तो 10 भव का मामला बन जाएगा। चलो वहां नक्की करके आओ। हमने चलो यार कुछ तो निकला, इतनी बात तो हुई, एक आदमी तो राजी हुआ, कोशिश करते हैं शायद बड़े भाई साहब भी थोड़े नरम पड़ जाए। उनके पास गए, कैसा बात, क्षमा मांगी का दिन है, हाँ है तो अब छोटे भाई को माफ कर दो ना, माफ कर दू, कोई माफी मांगने वाला नहीं है, हम मांगते हैं उसकी तरफ से, नहीं ऐसा नहीं, नहीं हमने कई तरह समाज में समाज की तरफ से मांगी और आपने माफ किया है ना, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। बहुत समझाया, समझाने के बाद में अंत में वहां भी अंतिम हथियार लगाया तनुपचंद जी ने, कौन सा क्या से नहीं था, हमारे तुम्हारे संबंध भी खत्म, तब देवी थोड़े नरम पड़ेगा, ठीक है ठीक है। लेकिन आप लोग ये तो बताओ कि वो माफी मांगने के लिए भी तैयार है, पहले उससे पूछ के आओ, अब तो मैं माफ करूं साहब, वहां तो हम पहले होके आए हैं, वो तो एकदम तैयार है, कैसे हो सकता है। आप लोग कहते हो तो कोई बात नहीं है, वो तैयार है तो मैं भी तैयार हूं, लेकिन ये तो बताओ वो लिखित माफी मांगेगा कि माफी, उसमें भी शर्त है, लिखित प्रूफ चाहिए, कल बदल जाए तो, अरे बदल जाए, ये तो बिल्कुल व्यक्तिगत चीज है, तुमने माफी मांगी, हमने माफ किया, हमने माफी मांगी, इसके प्रूफ की क्या जरूरत है, कौन सी अदालत में जाना है पंडित जी, लिखित माफी की क्या जरूरत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लिखित मांगने में से क्या ऐतराज हो सकती है, हजारों क्षमावाणी कार्ड उसने छपाए हैं और सारी दुनिया में भेजे हैं, एक आपको भी दिला देंगे, ऐ वो नहीं चलेगा। क्या चल जाएगा नानी भाई के, नहीं सर कोई बात नहीं है, सब वो माफी मांगने को तैयार है, आप माफ करने को तैयार है, इतनी बड़ी नदी पार हो गई तो वो भी हो जाएगा, सर हम समझाते हैं, लिखित मांग लेगा उसमें क्या है। उसके पास गए साहब, भाई साहब माफ करने के लिए तैयार है, वो थोड़ी सी उनकी एक भावना है, क्या भावना है कि लिखित मांगनी पड़ेगी, लिखित मैं नहीं मांगता, आपने हजारों लोगों से लिखित माफी मांगी है तो भाई से मांगने में क्या दिक्कत है, कि मैंने आज तक किसी से माफी माफी नहीं मांगी, मैं कोई माफी मांगने वाला हूं, लेकिन हजारों कार्ड भेजे हैं ना, अच्छा उनको पता ही नहीं है कि मैंने किसी से लिखित माफी मांगी है। हाँ ठीक है, एक कार्ड भाई साहब को भी लिख दो, नहीं कार्ड नहीं चलेगा, अलग अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, हाथ से नहीं, क्यों लेकिन नहीं माने लोग पीछे पड़ गए, तो कहा ठीक है लिख देता हूं, लिखा कि मैंने तो आज तक कोई गलती की नहीं है, फिर भी ये पंच लोग नहीं मानते हैं तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मांगता हूं नहीं तैयार हूं, और वो लेके बड़े खुशी खुशी इसने लिख दिया, बड़े भाई साहब के पास गए, साहब ये माफीनामा आ गया है, तो उन्होंने पढ़ा, फाड़ के फेंक दिया, गुस्से में आग बबूला हो गए, मैंने तो कोई गलती की नहीं है, ये माफी मांगने का तरीका है, पहले स्वीकार करें कि मैंने गलती की है, तब मैं सोचू, इस तरह मामला यहां अटक जाएगा, क्योंकि वो गलती मानने को तैयार नहीं होगा और उसका भाई बिना गलती स्वीकार किए माफ करने के लिए तैयार, क्या करें मोटन जी, छोड़ दे, देखो साहब पंडित जी आप छोड़ दो, हमने तो जो काम हाथ में लिया है आज तक उसे अधूरा छोड़ा नहीं है, जब काशीराम और अटल बिहारी वाजपेयी में समझौता हो सकता है तो ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो पीछे हटेंगे नहीं, आज तो करा के ही रहेंगे, कितना महान काम है, विश्व का कल्याण हो जाएगा ना, दोनों भाइयों का दर्द और खत्म हो जाएगा, तो क्या करें, पंडित जी आपकी बुद्धि पे किस दिन काम आएगी, किताबें तो बहुत लिखी, एक माफीनामा 2 लाइन का ऐसा लिख दो ना कि जिसकी तरफ से लिखो उसे लगे कि मैंने गलती स्वीकार नहीं करी, और जिसके पास जाए उसे लगे कि इसने स्वीकार कर ली, ऐसे तरकीब लगाओ कोई, हाँ अच्छे भाषा के पंडितों को बैठा के कमेटी बनाई और एक ऐसी भाषा लच्छेदार बना करके क्या कि उसे लगा कि हाँ हाँ उसने पास करा ली क्यों कैसे उसे लगा कि मैंने तो माफी मांगी ही नहीं क्यों और उसके गले उतर गया कि उसने लिखित माफी मांग ली है और एक काम संपन्न हो गया लड्डू बचना चाहिए लेकिन जरा जल्दी मत करो ये ठीक है ये नाटकी तो हो गया लेकिन ये समापन समारोह होगा कहां बड़े भाई साहब के घर के छोटे भाई साहब के घर तो छोटा भाई बड़े भाई के जाएगा माफी मांगने का नहीं मैं तो उसके यहां नहीं कि भाई साहब आप बताओ नहीं मैं उसके मैं तो उसकी देरी पर कदम नहीं रखू क्यों कहा चलो भैया अपना मंदिर किस काम के है दोनों जने मंदिर में आ जाओ घर पर मत जाना अब मंदिर में वो समावाणी समारोह आनंद संपन्न हो भी गया तो वो क्षमा कितने दिन कायम रहेगी मैं आपसे पूछता हूं अरे रहने का सवाल कहां है क्योंकि अंदर हृदय में क्षमा आई ही कहां है वो तो कागज में आई है वाणी में भी नहीं आई है क्यों वो तो पंडित की लेखनी में आई है उनने तो लिखा भी नहीं है कुछ ऐसी क्षमा वाणी हमें निहाल करेगी बोलिए हमारे आचार्यों की भाषा तो देखो क्षमा वाणी की खामेमी सभ्य जीवानम सभ्य जीवा खमंतु मे मिट्टी में सभ्य भूदेशु बैरम मध्यम न केणवी मेरा एक सहपाठी था मेरे विद्यालय में साथ साथ पढ़ते थे उसका भूपेंद्र कुमार नाम था बहुत दिनों से मिला नहीं होगा अभी भी कह नहीं सकता हूं वो बड़ा अकड़ के माफी मांगता था माफी मांगता था अकड़ के आपको धक्का लग जाए धक्का देता माफ करना धक्का देता माफी मांगता अकड़ता क्या माफी तो मांग ली और क्या करता तो माफी मांगते भी अकड़ता था माफी मांग के भी अकड़ता रहता था जैसे माफी मांगकर उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है आज के बच्चों में यही हाल हो गया है तो धक्का देगा सॉरी धक्का देता सॉरी कह दिया ना आजकल मैं माँ बाप को यही नाटक करते देखता रहता हूं ये माता है बताते सॉरी मांगना सॉरी कहना पड़ेगा नहीं मम्मी सॉरी नहीं रोजाना अखाड़े देखता हूं मैं जहां मम्मी कह रही सॉरी कहना पड़ेगा अब वो कहता मैं सॉरी नहीं कहूंगा और घंटे आध घंटे में मम्मी ने किसी तरह चॉकलेट वोकलेट देकर सॉरी कहलवा ली तो वो समझती है कि मैं इंदिरा गांधी बन गई मैंने हिंदुस्तान जीत लिया नहीं होता सॉरी नहीं कहला सकते और सॉरी कह दी माने मालूम ना मालूम कितना बड़ा जग हो गया है ऐसी हमारी क्षमा वाणी भी सॉरी बन के रह गई है आचार्य क्या कहते हैं पहला वाक्य क्या निकला आचार्य के मुख से खामेमी सब जीवानाम कि मैं सब जीवों को माफ करता हूं माफी मांगता हूं नहीं ध्यान तो दो ये क्या है माफ करता हूं ये पहला वाक्य और फिर कहा सब जीवा खमंतु में और सब जीव मुझे माफ करे बाद में कहा वास्तव में माफ करने के पहले माफी मांगने का कोई अर्थ ही नहीं है पहले माफ करो फिर माफी मांगो जो माफ करना ये क्रोध कसाय के त्याग का नाम है हमें किसी पर क्रोध है गुस्सा है और हमने माफ किया मैंने गुस्सा छोड़ा यही अर्थ हुआ ना और माफी मांगना में बाधक कौन है मान कसाय तो मान कसाय के त्याग का नाम है माफी मांगना कसायों में नंबर एक कौन है क्रोध और नंबर दो कौन है मान धर्मों में नंबर एक कौन है क्षमा धर्मों में नंबर दो कौन है मार्दव तो माफी मांगना ये तो मार्दव है क्षमा है ही नहीं तो क्षमा वाणी में तुम माफी मांगते क्यों हो अरे मांगते हो तो क्षमा करना दिवस के रूप में नहीं क्षमा याचना दिवस के रूप में मनाते हो ना मैंने हमें समझते ही नहीं कि हमें क्षमा करना भी है हम तो इसे क्षमा मांगने के रूप में ही मनाते हैं, लेकिन क्रोध का अभाव तो क्षमा करना है पंडित जी। आचार्य कह के पहले मैं सब जीवों को माफ करता हूं, तो कोई माफी मांगा ही नहीं, तो अपने भी ये मिट्टी बन जाए हम। अभी ऐसा करे मैंने अभी खत्म होगा ना, चले भाई मैंने आपको माफ किया, आपको भी माफ किया मोटा नहीं, मतलब भाई आपको भी माफ किया, तो पंडित पागल तो नहीं हो गया, सुभाष जी के पास ले चलो। सुभाष जी का क्या काम है, मेंटल हॉस्पिटल में ले चलो। ये माफी मांगता तो नहीं है, ये तो कहता है कि माफ किया माफ किया माफ किया, लेकिन मैं नहीं कहता हूं, आचार्य कहते हैं। छावे मी सब जीवाराम, मैंने सब जीवों को क्षमा किया, ये पहला वाक्य है। क्यों? लेकिन हम तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते, हमें बात कहेंगे तो लोग हमें आप व्यवहारिक समझेंगे कि कैसी बात करते हो, लेकिन सही बात ये है क्योंकि क्रोध को पहले त्यागना है, कि कोई माफी मांगेगा ही नहीं, तो मांगने की क्या जरूरत है, क्या क्षमा धर्म है क्या धर्म, बोलो क्षमा कोई दान की चीज है, क्षमा कोई आहार है, क्षमा कोई औषधि है जो कोई मांगे और कोई देवे, धर्म है ना उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग दस धर्म है कि नहीं, इसमें मांगने की क्या जरूरत है। सारी दुनिया हमसे माफी नहीं मांगे तो हम माफ नहीं कर सकते दुनिया को, मन दुनिया के प्रति हमारे हृदय में जो क्रोध है उसका हम त्याग नहीं कर सकते। ये धर्म तो प्योर व्यक्तिगत है, आप माफी मांगो चाहे नहीं मांगो, तो हमने आपके हृदय में के प्रति जो देश पाल रखा है, हमने आज उसकी घोषणा कर दी कि हमने छोड़ा, मांगने का इंतजार करने की क्या जरूरत है। कल्पना करो कि किसी ने हमसे माफी नहीं मांगी तो हम अगले भव में भी बैर विरोध ले जाएंगे। बोलो मुकुंद भाई, जिन जिनने मांग ली उन्हें तो हमने माफ कर दिया, बाकी का तो ले जाना पड़ेगा, क्यों क्या करें, तो किसको दे जाए, तो कोई मांग ही नहीं रहा। ये लेने देने की चीज नहीं है, ये तो अपना हृदय साफ करने की चीज है। क्यों? और हमने उसे माफी मांगी और हमें माफ नहीं किया, तो क्या जरूरत है सुनने की कि उसने माफ किया कि नहीं किया। हमने अपनी तरफ से जो मान कसाय का त्याग कर दिया, अब वो अपनी क्रोध कसाय नहीं छोड़ना चाहता है तो आराम से रखे, हमारे बाप का क्या बिगड़ता है, उसका बिगड़ेगा। हमने अपने क्रोध मान का त्याग करके हमने अपनी आत्मा में शांति रख ली, हम क्या करें। ये धर्म स्वाधीन क्रिया है, इसमें कोई पराधीनता की दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है, ये त्याग धर्म है, ये दान नहीं है। बोलते हैं क्षमा याचना क्षमा दान, ये दान नहीं है, हमारे क्रोध त्याग मान त्याग धर्म है। तो भाषा देखो, ये नहीं कहा उनने खामैनी शब्द जेनी नाम शब्द जेनी खमन तुम्हें, ये भी नहीं कहा खामैनी शब्द मनुजा नाम शब्द मनुजा खमन तुम्हें, ये कहा खामैनी शब्द जीवा नाम शब्द जीवा खमन तुम्हें, क्या अंतर है कि मैं सब जैनियों से माफी मांगता हूं और सब जैनी मुझे माफ करें, ये नहीं कहा। मैं सब मनुष्यों से माफ मांगता हूं, सब मनुष्य मुझे क्षमा करें, ये नहीं कहा। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूं, माने मैं एक इंद्री से भी, मैं आलू टमाटर से भी क्षमा मांगता हूं, इसका अर्थ है। मैं कीड़े मकोड़ों से भी क्षमा मांगता हूं, मैं मक्खी मच्छर से भी क्षमा मांगता हूं। भाई साहब आचार्य कहते हैं तो मक्खी मच्छर तुमसे माफी मांगने आएंगे तब तुम उन्हें क्षमा करोगे। मैं सब जीवों को माफ करता हूं, अगर शब्द जीवा खमन तुम्हें, और सब जीव मुझे माफ करे। मक्खी मच्छर, हाँ मक्खी मच्छरों से माफी मांगने का दिन है आज, तुमने भाई बंधु से भी नहीं मांगते हैं, किन से मांगने का है रमेश भाई, मक्खी मच्छरों से, उनके प्रति आपने कम अपराध किए हैं दीदी छिड़क कर।
जिनके प्रति अपराध किए हैं ना, उनसे माफी मांगने का दिन है कि नहीं, वे तो समझते ही नहीं है, वे तो मरे ही गए। अरे भाई सवाल उनका कहां है, तेरे हृदय में जो अपराध तूने किया है उसमें अपराध बोध की बात है, तेरे हृदय में वो बोध हुआ गलती है और उस गलती की मैं स्वीकार करता हूँ और भविष्य में नहीं करूंगा, इसका संकल्प करता हूँ, इसकी बात है। क्यों? एक मच्छर आया, काटा, हमारा आधा आधा बूंद खून भी कहां, पिता देगा पेट कहां इतना सा, हमारा आधा बूंद खून भी उसके पेट में बने कहां, उसका आकार भी खून की एक बूंद से 1/4 है, कितना छोटा सा मच्छर है, कितना खून पिया होगा उसने हमारा, क्यों? एक खून का बूंद का 8वां हिस्सा और हमने लेके फट सारा का सारा अपना खून निकाल लिया और उसकी जान निकाल ली और हमारे यहां देखा तो एक खून का धब्बा लगा, ये खून कहां से आ गया, मच्छर का होगा, मच्छर का नहीं तेरे ही है जो मच्छर ने पिया, होता क्या नहीं होता, क्या किया था बेचारे ने कि मेरा खून पिया था इसलिए मैंने मारा, तेरा कोई खून पिएगा तो मैं छोड़ दूंगा, हमारा विरोधी हिंसा का त्याग छोड़ी है, अरे अच्छा देनी है, मैं पूछता हूं मैं तेरा खून नहीं पीता तो क्या करता, कहां जाता, उसकी खेती है, उसके धंधा है, उसके दुकानदार है, उसे कोई नौकरी है, वो कोई मिनिस्टर है, आखिर उसे पेट तो भरना है कि नहीं, इसी दुनिया में जहां से मिलेगा अपना पेट भरना है कि नहीं, उसे पेट भरने का अधिकार है कि नहीं, उसे जीने का अधिकार है कि नहीं, क्यों ले लिया था थोड़ा सा तेरा और तूने उसके बदले में उसकी जान ही ले ली, एक ककड़ी के चोर को कटार मारना जैसा नहीं है, साहब आप क्या बात करते हो, अभी तो हमने एक ही मच्छर मारा है, आजकल मच्छर बहुत हो गए हैं, डीडीटी बुला, छिड़को सर मच्छरदानी बुला ना, डीडीटी क्यों बुलाता है, मच्छरदानी लगा ले, सारे घर में एक मच्छर नहीं रहना चाहिए, तो मच्छर ने हमें काटा क्या है, अकेले उसको दंड देना चाहिए ना, बाकी के मच्छरों तो नहीं काटा भाई साहब, उसमें ऐसे भी मच्छर हैं, ऐसे भी कीड़े मकोड़े मर रहे थे डीडीटी से कि जिनने तेरा कुछ नहीं बिगड़ा था, बिगाड़ा था बोल, ये बचेंगे, लेकिन मेरे घर में कहीं एक मच्छर नहीं रहना चाहिए, हाँ कितना बढ़िया, और भाग्य से यदि कहीं म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, तो नगर निगम का अध्यक्ष हुआ, तो मुंबई का, आजकल मुंबई में मच्छर बहुत हो गए हैं, सारे मुंबई में डीडीटी छिड़कवा, और महादुर्भाग्य से भारत का प्रधानमंत्री हुआ तो भाग्य से नहीं, सारे हिंदुस्तान में एक मच्छर नहीं रहना चाहिए, और गांव गांव की दीवार पर लगा दो कि जहां मलेरिया हो तो बताए तो 1,000 रुपए इनाम, क्यों, यानी हमने सारे देश में से मच्छरों का नाश कर दिया है, कोई बतावे तो हम उसे पुरस्कार दें, ऐसा प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से बनेगा या सौभाग्य से, एक कतलखाने खोलने के आर्डर पर आदेश देना पड़े, ऐसा प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से बनेगा या सौभाग्य से, आपको हंसी क्यों आई थी कि दुर्भाग्य से मैंने कहा था, ये बिदसा है ना बिदसा, वहां पर एक वकील साहब थे नंद किशोर जी, हमेशा सोनगढ़ आते थे 20-20 दिन के सफर में, हमारे जयपुर भी आते थे, नाम सुना कभी आपने, वो साहब म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बन गए, अब वो आया कि साहब पूरे बिदसा में डीडी छिड़कने का आदेश, उसका साइन करो, बोले मैं तो नहीं करूंगा, इस बात पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा दे दिया, राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन डीडीटी के छिड़कने पर आदेश पर साइन नहीं की, आप जानते ना पंडित जी, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया है, बोलो, और प्रधानमंत्री हो जाओगे तो कत्लखानों पर सब पर आदेश पर हस्ताक्षर करना पड़ेंगे बेटा, बनना है नंद जी भाई, अरे महापुण्य का उदय है कि अपन इस चक्कर में नहीं है, सच बोलता हूं मैं आपसे, तुम्हें एक मच्छर ने क्या काटा और तुमने मच्छर के कुल साफ कर दिए, उनके प्रति तुमने कोई अपराध नहीं किया है,
उनसे माफी मांगने की जरूरत है क्या नहीं है? अच्छा माफी मांगे और माफ करने की जरूरत है क्या नहीं है? माफ करने का मतलब समझते हैं क्या? हुआ बोलो कि कल से डीडीटी नहीं छिड़कूंगी, कल से नहीं मारूंगी, यही तो माफ करना हुआ ना। अब जो मर गए उसको क्या करें? क्यों अब मैं भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करूंगा, ऐसा अपराध मेरे जीवन में नहीं होगा, उसका नाम है माफ करना। आचार्य जब कहते हैं कि मैं सब जीवों को माफ करता हूं, इसका अर्थ यह है कि अब एक कदम भी जमीन पर रखूंगा तो चार हाथ जमीन देख के चलूंगा, और कहीं बैठूंगा तो पीठी से पहले जमीन को निर्जंतु कर लूंगा, बाद में बैठूंगा। ये अर्थ है उसका प्रैक्टिकल। माफ किया और माफी मांगता हूं कि उसके बाद भी मेरे से किसी जीव जंतु को तकलीफ पहुंच जाए तो उसकी सच्चे हृदय से क्षमा याचना करता हूं। बोलो, कभी हमने सोचा था कि ऐसा भी होगा मक्खी मच्छर से माफी मांगने की बात भी कोई पंडित करेगा क्यों? लेकिन मैं शास्त्र में लिखी है, मैं तो शास्त्र का अर्थ करता हूं। देखो ये जो क्षमावाणी कार्डों पर नहीं, सैकड़ों क्षमावाणी कार्डों पर दोहा लिखा रहता है, खामैनी सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खमन तुमे, लिखा रहता है नहीं लिखा रहता है? तो आपने कभी सोचा इसका क्या अर्थ है? हमें सोचने की क्या जरूरत है? वो लिखने वाले ने कहां सोचा? क्यों छपाने वाले ने, और पंडितों ने नहीं सोचा तो हम कहां सोचे? सोचने का काम तो पंडितों के जुम्मे है ना। लिखा रहता, पढ़ा तो है ना आपने। और मिट्टी में शब्द भूदे से मैं सारी दुनिया से मित्रता चाहता हूं, मक्खी मच्छरों से मित्रता चाहता है क्या? हाँ, तो दीदी छिड़क के होगी मित्रता? मिट्टी में शब्द भूदेशु, सारे प्राणियों से मैं मित्रता चाहता हूं, तो इसमें अकेली क्षमा वाणी कहां है? क्षमा याचना कहां है? माफ करना में क्रोध का त्याग आ गया, माफी मांगने में मान का त्याग आया, और मैं सबसे मित्रता चाहता हूं, ये सरलता की बात आ गई, माया के त्याग की बात आ गई। ये दस धर्मों की आराधना से जो हृदय में निर्मलता प्रकट हुई है, वो निर्मलता वाणी में फूट पड़े, उसका नाम है क्षमा। कहता है इस पंडित का कोई भरोसा है? एक मिनट पहले कहता था सब शत्रुओं का पर्व है और उनसे ही माफी मांगना चाहिए, सबसे माफी मांगने की क्या जरूरत है? एक मिनट में कहने लगा कि मक्खी मच्छरों से भी माफी मांगना चाहिए। बोला शैलेश भाई क्या करें ऐसे पंडित का? सोचो सोचो और क्या करो। तो सोचने के लिए कहता हूं कि भाई मेरी बात पे विचार करो गंभीरता से कि दोनों बातों में दम है कि नहीं है। जो हमारी क्षमा वाणी है वो कितनी औपचारिक बन के रह गई है, और वास्तविक क्षमा वाणी का स्वरूप क्या है? तो उसका नाम है क्षमा वाणी क्यों रखा? यदि क्षमा याचना नाम है तो मार्दव वाणी रखना चाहिए। लेकिन भाई साहब उसका अर्थ अकेला मार्दव हो तो मार्दव वाणी रखे, जब दसों धर्मों की आराधना से निर्मलता प्रकट हुई वो अर्थ है, तो क्षमा नाम रख दिया। क्षमा क्यों रखा? दस धर्म का रखते बोले इतना बड़ा नाम चलता? उत्तम क्षमा मार्दव वादव सत्य सौ संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य वाणी। बोलो ठीक है चलेगा, इसलिए एक नाम रखा। घर में सात भाई हो और दुकान खोलनी हो तो क्या करेंगे? अब आजकल तो अलग अलग नाम रखने लग रहे हैं कि गुड लक के नवानु क्या क्या रखने लग गए। पहले जमाने में तो अपने नाम पर ही रखते थे ना दुकानों के नाम, तो क्या करें? सेवन में दर्श क्यों? रामलाल एंड संस, मेरे बड़े भाई के नाम लेकर के एंड विदर्स ऐसा लगा देते कि नहीं? और कभी कभी दो नाम रखने की परंपरा थी ना, तो एक नाम रख दिया, दस भाई पार्टनर है और नाम एक है, चलता था कि नहीं चलता था? ऐसे ही समझ लो कि उत्तम क्षमा नाम एक है और उसके दस बहन एक भाई पार्टनर है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या नहीं साहब, क्षमा वाणी कहने से तो लोगों को यही भ्रम हो जाता है, अकेली क्षमा की बात ही है, दस धर्म की बात नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आपने अपने एक मिल खोला, उसका नाम रखा गांधी दाल मिल, वो तो गांधी जी का है, गांधी जी के बाल बच्चे आएंगे तो दोगे उसे एक पैसा? गांधी जी की वजह से कुछ भी नहीं है, और संपत्ति के मालिक तो हम लोग हैं, सारी दुनिया समझती है कि नहीं? क्यों महावीर सू स्टोर, वाह
महावीर के नाम पर
जूतों की दुकान
क्या महावीर क्या होंगे? नाम महावीर का और दाम अपना, तो सारी दुनिया समझती है
ए महावीर सुई स्टोर किसी महावीर भगत का होगा, महावीर का नहीं,
तो दुनिया में कहीं भ्रम नहीं होता, सब बात समझ लेते हैं ना, यही क्यों भ्रम हो जाता है? यहां भी सही समझना चाहिए कि साहब दुनियादारी में तो हम माहिर हैं, इसलिए भ्रम नहीं होता है, लेकिन इस बात में हम समझते नहीं है इसलिए भ्रम हो जाता है, कि तुम समझते नहीं हो इसीलिए तो हम समझाते हैं। नहीं समझना कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन समझाने के बाद भी नहीं समझना अपराध जरूर है, और समझाने के बाद समझ में आ जाने पर भी नहीं मानना उससे बड़ा। समावानी का सत्ता स्वरूप क्या हुआ कि हमारे हृदय में सब जीवों के प्रति जो दया भाव, जो कोमल परिणाम, जो सरल परिणाम, जो पवित्र परिणाम हृदय में पैदा हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति आज के दिन हम करते हैं और करनी चाहिए। हम गंभीरता से विचार करें तो हमारी क्षमावाणी सार्थक हो जाए, लेकिन क्या करें, भगवान महावीर का निर्वाण वर्ष था, क्षमावाणी कार्डों बनाने की एक प्रतियोगिता थी, आजकल बनाते शाकाहार की चित्र प्रतियोगिता, कोई शाकाहार का बढ़िया चित्र बनाया तो पुरस्कार दिया जाता है, बनाते कि नहीं करते करते ऐसे बनाए थे क्षमावाणी प्रतियोगिता, सारे देश से चित्र मंगाए थे अखिल भारतीय संस्था में, और वो चित्र सारे दिल्ली में इकट्ठा लाखों इकट्ठे हुए, और उसमें एक पुरस्कार दिया गया फर्स्ट क्लास फर्स्ट जो चित्र आया, भाग्य से वो पुरस्कार वितरण समारोह हमारे जयपुर में रामलीला मैदान में हुआ, जिसमें बड़े बड़े प्रधानमंत्री जैसी हस्तियां आई हुई थी, समाज के बड़े बड़े नेता लोग आए हुए थे, जयपुर का होने की प्रतिनिधि की हैसियत से मैं भी उस स्टेज पर बैठा था, मेरा भी 10 मिनट का भाषण था, पंडित जी बड़ा धर्म संकट पैदा हुआ, तो उस प्रतियोगिता में जो चित्र पुरस्कृत किया गया था मैंने इस किताब में लिखा है, वो सारी दुनिया जाने इसलिए उसको सभा में कहा भी था पंडित जी, उसमें चित्र में क्या था, चित्र में ऐसा था कि एक आदमी ने 100 अपराध किए, पौराणिक आख्यान है ना, तब तक उसे माफ कर दिया, 101वां अपराध किया तो तलवार से उनने उनकी गर्दन काट दी, तो ये बना हुआ था, एक तरफ बना था 100 अपराध करते करते फिर गर्दन काटनी बनी हुई थी, और ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्षमा वाणी का, और नीचे लिखा था क्षमा वीरस्य भूषणम, और जो प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण करा रहे थे, विचारों का स्वर्गवास हो गया, से नाम लेने का फायदा नहीं है, तो समझा रहे थे उसका अर्थ, ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्यों आया, कि क्षमा वीरों का आभूषण है, तो 100 अपराध माफ किए इसलिए तो क्षमा हो गई, और 101 में अपराध पर गर्दन काट दी इससे उनकी वीरता सिद्ध हो गई, तो क्षमा वीरों का आभूषण है कायरों का नहीं, यदि गर्दन नहीं काटते तो क्षमा कायरों की हो जाती, क्या पंडित जी गजब हो गया, मैंने कहा कि क्षमा का चित्र के द्वारा समझाने के लिए गर्दन काटना जरूरी है, मैं आपसे पूछता हूं वीरता अकेली गर्दन काटने में ही है, वीरता अकेली युद्धों में ही होती है, धर्मवीर नहीं होते हैं लोग, क्यों हमारे तीर्थंकर जिनने इतने उपसर्ग सहे वे कम धीर वीर थे, तो फिर हमारे भगवान महावीर तो महावीर रहे ही नहीं, क्योंकि उनने तो किसी की गर्दन काटी ही नहीं, उनने तो इतने उपसर्ग आए अपने माथे पर झेले, क्यों दानवीर होते हैं धर्मवीर होते हैं, अरे वीरता का क्षेत्र अकेली गर्दन काटने ही तक सीमित नहीं है, क्या वीरता बताने के लिए किसी की गर्दन कटाना जरूरी है, क्यों क्या हमारे पार्षद तो महावीर की वीरता में हमें शंका थी, कि कमठ के उपसर्ग को हम नहीं बता सकते थे कि उन्होंने पासनाथ ने नो भव से क्षमा की। कमठ बराबर नो भव से उनके बैर विरोध लेता रहा, क्यों? और उन्होंने नो भव में हर बार क्षमा किया, बदला नहीं लिया। क्या वो पुराण आख्यान क्या कमजोर पड़ता था? क्यों? हमारे वे मुनिराज कि जिनके गले में राजा सैनिक ने सांप डाल दिया था मरा, और उन्होंने जब बाद में आशीर्वाद दिया तो चेलना और सैनिक को दोनों को धर्म वृद्धि एक सा आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो क्या क्षमा कोई कमजोर क्षमा थी? बोलिए, इसमें गर्दन काटना दिखाना जरूरी है? तो जिस आख्यान में ये बात आती है वहां क्षमा है कहां? उनने तो उस व्यक्ति की मां को वचन दिया था, मैंने कहा था भाई ये लड़का मेरा बहुत उद्यमी है और तू बहुत बड़ा आदमी है, तो ये अपराध करे तो तू उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना। देख बुआ, बुआ जी थी मैं उसकी, बुआ जी समझते कि नहीं समझते, ये 100 अपराध तो मैं इसके माफ कर दूंगा लेकिन उसके बाद मैं माफ नहीं करूंगा। तो उसी दिन से गिनती शुरू कर दी और इंतजार करने लगे कब 100 पूरे हों और मैं इसे मारूं। क्या? तो गिनती पूरी हुई और फटाफट साफ। क्यों जी? माफ करने वाले को दूसरा अपराध जीवन में हो सकता है? यदि आपने पहला अपराध माफ कर दिया तो दूसरी गलती की तो पहली है कि दूसरी? यदि दूसरी है तो माफ कहां किया, और माफ कर दिया तो दूसरी कैसे हो सकती है? क्यों? बोलो। लेकिन हमारे समाज के सर्वश्रेष्ठ लोगों ने उसे चुना, उसे पुरस्कृत किया मिनिस्टरों ने देकर के, और सारी समाज ने तालियां बजाई, और उसके बाद मेरे से बोलने को कहा, मेरी क्या हालत हुई होगी पंडित जी बताओ। लेकिन मैंने बोला, वो बोला जो अभी यहां बोल रहा हूं। अब अपनी किताब में लिखा और लाखों छपाया, लिखा है पढ़ने में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब पढ़ ले। क्यों? उनको कहा सब व्यवस्थापकों को सबको कि क्या किया आपने? ये क्षमा जैनियों की क्षमा ये है, इसको क्षमा वाणी बनाना चाहते हैं आप? अरे क्षमा तो मुनियों का धर्म है, 10 धर्म मुनियों की मुख्यता से लिखे गए कि नहीं लिखे गए? तो कोई मुनि नहीं मिला तुम्हारे लिए? अपने जैन धर्म के हिसाब से जो नरक में गया वो मिला? समझ में आ रहा कि नहीं आया? क्षमा धारक तुमने किसको बताया मंडन लाल जी? समझ में आता कि नहीं आता? सर्वश्रेष्ठ समाधारी हमारे 24 तीर्थंकरों में कोई नहीं, हमारे महामुनि राजों में कोई नहीं, उपसर्ग जमियों में कोई नहीं, स्वर्ग जाने में कोई नहीं, नरक जाने वाला हमारे यहां हो गजब हो गया। क्या पंडित जी ठीक है मेरी बात का नहीं? मेरे से किसी माई के लाल ने आज तक आके ये नहीं कहा कि आपने ये लिख के ठीक नहीं किया कि बोल के ठीक नहीं कहा। मैं चाहता हूं कोई मेरे पास आए और मेरी गलती बता दे। क्या है उत्तम क्षमा? सवाल इसका नहीं है कि पुरस्कार किसे मिला और किसे नहीं मिला, सवाल इसका है कि हमारा चिंतन हम क्षमा के बारे में क्या समझते हैं। जबकि हर वर्ष क्षमा वाणी मनाई जाती है, हर जगह हजारों व्याख्यान होते हैं, हम लोग सुनते हैं, और हम आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि सच्ची क्षमा वाणी क्या है। पहले दिन अपन ने बात कही थी असली क्षमा वाणी कौन है, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को औगुण कहो बखानो, कहिए बखानो, वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करे, घर से निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। पूजा में लिखा था ना भाई साहब, कहां जाने की जरूरत थी दूसरी जगह? मैं पूछता हूं कि चार कसाय का अभाव हो गया जिन तीर्थंकरों के केवल ज्ञान होने के बाद, उनमें भी उत्तम क्षमा नहीं आई? अनंतानंदी क्रोध नहीं, प्रत्याख्यान नहीं, अप्रत्याख्यान नहीं, संचलन नहीं, और ये चार ही कसाय जिसका विद्वान है उसके उत्तम क्षमा आ गई, गजब हो गया। ये करुणानियों के विशेषक पंडितों की समझ में इतनी बात नहीं आती है? तो
जिसके जिन कसायों का अभाव हो उनको होने चाहिए ना। और भाई एक बात मैं अंत में कहता हूं, गुरुदेव श्री ने एक दफे क्षमा वाणी के दिन ऐसा कहा था क्या हुआ क्या है, एक दिन गुरुदेव ने क्षमा वाणी के दिन कहा कि मैंने किसी प्राणी को यदि पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा। सबसे बड़ा अपराध तो यह है कि किसी को पर्याय दृष्टि से देखना, दीर्घ दृष्टि से देखो ना तो दीर्घ दृष्टि से जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझारे दीर्घ दृष्टि है, जो महिलाएं हैं जो पुरुष हैं, क्यों जो गरीब है जो अमीर है, मैं पंडित हूं तुम समझते नहीं हो, मैं सेठ हूं तुम गरीब हो, ये सब बातें पर्याय दृष्टि की वाली बातें हैं भाई साहब। ये छोटे बड़े की बातें माफी मांगना मंगवाना ये सब पर्याय दृष्टि की बात है। मैं तो सबको भगवान के रूप में देखता हूं, कभी मेरे ख्याल में आ गया हो मैंने पर्याय दृष्टि से देखना मैंने तुम्हारे के प्रति छोटेपन का भाव। उस महापुरुष ने कुछ सोचा होगा तब उसके मुख में से बात निकली होगी ना, क्यों उनकी वो ये बात यहां से आई थी टूडी के भीतर से और हमारी क्षमावाणी यहां से आती है। और भाई अपराध अकेले हमने दूसरों के प्रति नहीं किए हैं, अपने प्रति भी बहुत किए हैं ना। अपने आत्मा से भी माफी मांगने की जरूरत है क्या नहीं, अपने आत्मा को भी माफ करने की जरूरत है क्या नहीं, अपने साथ क्या कम छल कपट किया है उसके साथ भी सरल व्यवहार करने की जरूरत है क्या नहीं, अपने आत्मा को कम अपवित्र किया है उसमें भी कुछ पवित्रता लाने की जरूरत है क्या नहीं। क्यों दूसरों से तो अनंत बार क्षमा किया और क्षमा मांगी लेकिन अपने आत्मा को आज तक हमने क्षमा नहीं किया और न क्षमा मांगी। हमने इसके प्रति कितने अपराध किए हैं, मैंने पहले दिन थोड़ी बात की थी क्या नहीं की थी, कितने मिथ्यात्वादी विकारों का सेवन करके चार गति और 84 लाख योनियों में आज तक लखड़ाया, देश के प्रति कम अपराध है क्यों? इसका कम अपमान किया जो 3 लोक का नाथ था उसे दर दर का भिखारी बना के रख दिया, इसका कम अपमान किया है, इसके साथ कम आड़ाई बरती है क्या कि ऊपर से कुछ अलग बात करी अंदर से दूसरे के साथ छल नहीं किया, इस छल का परिणाम तो इस आत्मा को भोगना पड़ा ना। क्यों पाप बंद किसे हुआ, हमने दूसरों के साथ छल किया उसका फल उसे भोगना पड़ा क्या हमारे आत्मा को बोलो, हमने लोभादिक कसाएं की तो उसका फल किसे भोगना पड़ा। सीता जी ने कहा था जब उसने जंगल में छोड़ने वाले सेनापति से रामचंद्र जी से कह देना कि धोबी के कहने से यदि मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, दुनिया में धोबियों की कमी नहीं है, कोई धोबी धर्म की निंदा करने लग जाए तो उस धोबी के कहने से धर्म को मैं छोड़ देना, मेरे को छोड़ने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे यहां 8,000 रानियां हैं काम चल जाएगा तुम्हारा, लेकिन धर्म को छोड़ दिया तो 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकना। तो तुमने दूसरों को माफ किया तो ठीक और नहीं किया तो ठीक, भाई से झगड़ा रखना हो तो रख लेना कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अपने से तो मत रखो, अपने आत्मा को तो माफ कर दो। भाई साहब भाई से झगड़ा रखने का उपदेश नहीं है, ये पंडित जी ने परमिशन दे दी इसलिए मैंने रख लिया। तो एक दफे हम अपने आत्मा को माफ कर दें उसको देखें, माफी आत्मा से माफ करने का अर्थ नहीं है तुम्हें माफी पंडित हरमचंद मुझे माफ कर दे, इसका नाम माफी मांगना नहीं है, जाओ पंडित हरमचंद तुम्हें माफ किया, इसका नाम माफ करना नहीं है, ये तो व्यवहार दूसरों के साथ होता है। अपने साथ तो आत्मा की अरुचि छोड़कर उसकी सुध लेना, उसको जानना, उसमें अपनापन स्थापित करना, उसका ध्यान रखना, उसका ध्यान करना, ये आत्मा से को माफ करना है, ये आत्मा से माफी मांगना है, ये आत्मा के साथ सरलता का
व्यवहार है। यदि ये हो गया एक बार जीवन में तो दूसरों के माफ तो हो ही जाएंगे, दूसरों से माफी तो मांगी ही जाएगी और दूसरों के प्रति भी सरल व्यवहार सहज हो ही जाएगा। इसलिए भाई सारे जगत पे से दृष्टि हटाकर एक अपने आत्मा जो परम पवित्र है उस पर ले जाए तो उसमें स्वयं अपना आत्मा भी माफ होगा और सारा जगत भी माफ होगा। ये क्षमा वाणी का पर्व है, ये इस साल का पर्व कुछ यादगार हो जाना चाहिए। चलो मुकुंद
भाई, क्या पता आज ये क्षमा वाणी अपनी आई कि नहीं आई, आएगी, घबराना नहीं, ऐसा भी चिंता नहीं है, विकल्प नहीं है, लेकिन क्यों इंतजार रखे अपन अगली का, जब बाकी का काम अगली साल निपटा देंगे।
इस साल पूरा कर ले, एक एक जिस आदमी के विरुद्ध हमने आपने मन में भी विकृति की है सोच सोच कर स्वीकार करके उससे क्षमा याचना करना, तो समझना के हमारा ये सार्थक हुआ।
समय हो गया है, लेकिन एक सही घटना में सुना करके अपनी बात खत्म करूंगा।
कई 15 साल पहले मैंने अजमेर में क्षमा वाणी की थी,
क्षमा वाणी के दिन मैंने ये व्याख्यान दिया तो वहां एक सोगाणी जी थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, आप जानते ललित सोगाणी एडवोकेट हैं अभी, उनके पिताजी आप लोग अजमेर के आसपास वाले जानते होंगे, तो उन पे इतना असर पड़ा कि उन्हें रात भर नींद नहीं आई। नींद नहीं आई क्योंकि उनकी जो बेवाई जी थे समधी जी, क्या बोलते आपके, उनसे उनका ऐसा बैर विरोध था कि 10-20 साल से बोलना चालना बंद, घर आना जाना बंद। अभी उनके मन में रात भर नींद नहीं आई कि मैं तो अब जाकर के उनसे सुबह माफी मांगूंगा। सुबह 5 बजे उठ के उनके घर गए और दरवाजे से लौटे, क्योंकि वो बहुत तीव्र कसाय वाला है, मैं पहुंच जाऊंगा तो माफ करने वाला तो है नहीं और न मालूम कितनी सुनाएगा, तो आज का सुबह और बिगड़ जाएगा। चलो भैया अपन तो बाप, ये पंडित जी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। एक फंडांग लौटे, फिर कहा गया अरे बेवकूफ ये क्या कर रहा, क्या करेगा, मारेगा पीटेगा गालियां देगा, वो तो कहा था ना गाली सुन मन खेदना आनो, भूल गए। घंटी बजाई, बेवाई दी आए थे, आप मैंने कल व्याख्यान सुना था क्षमा वाणी का और इसलिए मैं माफी मांगने आया हूं, मैं अगले भव में बैर विरोध लेकर नहीं जाना चाहता, मैं इस भव का 80 बरस के थे इस भव का इस भव में ही छोड़ जाना चाहता हूं। कि दुबाई जी आप जीत गए मैं हार गया, क्या कि मैंने भी सुनी थी व्याख्यान, मुझे भी नींद नहीं आई, मैं भी सोच रहा था तो जो पहले तुम आ गए मैं नहीं जा पाया क्या, और उन्होंने आकर के मेरे को ये सुनाया तो मेरे को लगा भाई आज मेरी समावरणी का व्याख्यान सार्थक हो गया। अब मैं हर साल लोग चौदस के बाद भगाना भी चाहे तो भागता नहीं हूं, कहता हूं क्षमा वाणी का व्याख्यान करके जाऊंगा, और किसी का भाग जग जाए बहुतों का जगह होगा, उनने मुझे बताया नहीं आगे इतना ही फर्क हुआ है, क्यों कोई बता देता है कोई नहीं बता देता है, बता देता है तो मुझे उदाहरण देने के लिए थोड़ी सामग्री मिल जाती है, नहीं बताता है तो मैं अपने अंदर के कारखाने में से पैदा करता हूं माल, क्यों कहा। इसलिए भाई हमारी ये क्षमा वाणी सार्थक हो जाए इस मंगल भावना के साथ में अभी की बात समझ।